यशाया अध्याय 50। अध्याय 50 में मसीह यीशु की एक अन्य अद्भुत भविष्यवाणी तथा अपने ही लोगों द्वारा अपमानित किए जाने की भविष्यवाणी है। यशाया अध्याय 50 पद 1। यहोवा यूं कहता है, वो इसराइल से कह रहा है। यशाया अध्याय 50 पद 1। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ में भेजा? यहोवा यूं कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। परमेश्वर ये घोषणा कर रहा है कि इसराइल का उसके अपराधों के कारण त्याग किया गया था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें दुश्मनों के हाथ नहीं बेचा था। उन्हें अपने अपराधों के कारण बंधुआई में जाना पड़ा था। वे जीवन जल के सोते से अर्थात परमेश्वर से विमुख हो गए थे। वे मूर्ति पूजा कर रहे थे। उन्होंने ही तो अपने आप को बेच दिया था। यशाया अध्याय 50 पद 2। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, और जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? परमेश्वर ने कहा, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला, जब मैं आया तब कोई ना मिला। यीशु अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो उन्हें पुकारता रहा, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? यशाया अध्याय 50 पद 2 से लेकर 4 तक। देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूं, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूं, उनकी मछलियां जल बिना मर जाती और बासती है। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूं, प्रभु यहोवा ने। निश्चय ही ये मसीह यीशु की भविष्यवाणी है। यशाया अध्याय 50 पद 4 और 5। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। यहां प्रभु यीशु मसीह है जो एक दास वरन अपने पिता के आज्ञाकारी दास के रूप में कह रहा है। आपको ध्यान होगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना अध्याय 5 पद 30, मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यूहन्ना अध्याय 8 पद 29, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे पिता प्रसन्न होता है। यहां वो कह रहा है, भोर को नित वो मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है, मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। पुराने नियम के अनुसार यदि आप दास हैं, तो आप 6 वर्ष तक सेवा करेंगे और आपकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व आपके स्वामी पर होगा। यदि आप विवाह के योग्य हैं, तो आपका विवाह भी वो कराएगा, परंतु यथार्थ में आपका अपना कुछ नहीं होता था, तब आपका स्वामी 6 वर्ष सेवा लेने के बाद 7वें वर्ष आपको स्वतंत्र कर देता था कि आप जा सके। यदि आप कहें, मैं अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से प्रेम करता हूं, परंतु मुझे यहां सेवा करना पसंद है, मैं यहां रहना चाहता हूं और मैं आपकी सेवा करने की इच्छा रखता हूं, अतः मैं यहां रहना चाहता हूं, तो वो नगर के प्राचीनों को बुलाएंगे और वो आपको अपने द्वार पर खड़ा करेगा और वो एक सुआ लेकर आपके कान के मांस में चुबा देगा और उसमें एक पिन डाल देगा, जिसका अर्थ ये हुआ कि आप उसके द्वार से बांध दिए गए। वो तब आपके कान में एक सोने की बाली पहना देगा, इसका अर्थ ये हुआ कि आप उसके बंधुआ दास हो गए, आप अपनी इच्छा से आजीवन उसके दास बन गए। प्रभु कहता है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया और ना पीछे हटा। कहने का अर्थ यह है कि वो स्वामी की इच्छा के अधीन हो गया। ये यीशु मसीह के आत्मसमर्पण का उत्कृष्ट वर्णन है। वो क्रूस की मृत्यु तक पिता के अधीन समर्पित रहा। यशाया अध्याय 50 पद 6, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ। सुसमाचार वृत्तांत में हम पढ़ते हैं कि पिलातुस ने उसे कोड़े लगवाए थे। अपराधी की पीठ पर उन 40 कोड़े मारे जाते थे। इसे अंग्रेजी में कैट ऑफ नाइन टेल विप कहा जाता है। ये चमड़े का कोड़ा होता था जिसमें कांच के टुकड़े और रंगे के टुकड़े लगे होते थे कि वो मांस को फाड़ दे। इस मार का प्रमुख उद्देश्य था अपराधियों से अपराध स्वीकार करवाना। ये रोमी सरकार का थर्ड डिग्री व्यवहार था कि कुकर्मी से दोष स्वीकार कराया जाए और इस प्रकार अधिकांश अपराध को समाप्त किया जा सके। कुछ एक मार में ही अपराधी दोष स्वीकार कर लेते थे। स्वीकार करने के बाद मार की गति को धीरे धीरे कम कर दिया जाता था कि अपराधी अपराध स्वीकार करने के लिए हिम्मत बांधे। यदि अपराध स्वीकार नहीं किया जाता था तो मार की गति को बढ़ाया जाता था, जिससे कि अपराधी शीघ्र ही अपराध स्वीकार कर ले। यशाया 53 अध्याय 7 पद, भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसने कहा, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ दी, परंतु ना उसने पाप किया था ना ही कोई अपराध जिसके लिए उसे अंगीकार करना पड़ा। यीशु मसीह को रोमी सरकार ने मुंह के बल लेटाकर पीठ पर 39 कोड़े मरवाए थे। इसके बारे में यशाया 53 अध्याय में हम पढ़ेंगे। उस अध्याय में परमेश्वर के द्वारा उसे ताड़ना देने का उद्देश्य जान पाएंगे। यशाया अध्याय 50 पद 6, और गाल मोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। सुसमाचार में बताया गया है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मुंह ढांप कर उसे थप्पड़ मारे और कहा, भविष्यवाणी कर कि तुझे किसने मारा है। अब यदि प्रहार आपकी आंखों के सामने किया जा रहा हो तो आपका शरीर इस प्रकार बना हुआ है कि आप अनजाने में उस वार से अपनी रक्षा कर लेते हैं, या उस प्रहार को सहन करने के लिए आपका शरीर तैयार रहता है। मान लो कि आप सीढ़ियां उतर रहे हैं और आप अंतिम सीढ़ी के प्रति सतर्क नहीं हैं, तो आपका शरीर उस अनजान झटके को सहन करने के लिए तैयार नहीं होता है और उसके कारण आपको चोट पहुंच सकती है। अपनी पिछली इसराइल यात्रा में हम किंग डेविड होटल में ठहरे हुए थे। इस होटल में आग से बचने के लिए आपातकालीन निकास मार्ग का इस्तेमाल किया, क्योंकि वहां लिफ्ट धीमी थी, जाने आने में देरी हो रही थी। उनमें सीढ़ी का चरण अन्य चरणों से आधे इंच के अंतर पर था। एक महिला थी जो उन सीढ़ियों से उतर रही थी। जब वो उस सीढ़ी तक पहुंची तो तब उसका मस्तिष्क उस अंतर के लिए तैयार नहीं था। वो तो अन्य सीढ़ियों के अभ्यस्त थी, अतः जब उसने उस सीढ़ी पर पैर रखा तो झटके के कारण उसका पैर दो जगहों से टूट गया, क्योंकि उसका मस्तिष्क उस प्रहार को संभालने के लिए तैयार नहीं था। कहने का अर्थ यह है कि हमारे मस्तिष्क में एक अविवेचित प्रतिक्रिया का प्रावधान होता है। जब आप प्रहार को आता देखते हैं, तब आपकी आंखें भी अपने आप बंद हो जाती हैं। यदि ऐसा शारीरिक प्रावधान ना हो तो पहलवान अखाड़े में एक दूसरे की हत्या कर देते, परंतु आप देखते हैं कि वे किस प्रकार अपने आप को बचा लेते हैं। यीशु मसीह के चेहरे को उन्होंने ढांप दिया था और वो प्रहारों को देख नहीं पा रहा था और अविवेचित प्रतिक्रिया उसमें नहीं हो रही थी। इस प्रकार प्रहार का उस पर व्याप्त असर हो रहा था। परिणाम स्वरूप उसका चेहरा सूज गया और विकृत हो गया था। उसका चेहरा मनुष्यों का सा लगता भी नहीं था। यशाया 52 में हम इसे देखेंगे। तो ये वो भविष्यवाणी है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ की। यशाया अध्याय 50 पद 6, और गाल मोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, उन्होंने हाथ भरकर उसकी दाढ़ी भी नोच ली थी। इसके परिणाम स्वरूप उसका चेहरा मनुष्यों के जैसा नहीं रहा था। यशाया अध्याय 50 पद 6, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने अपना मुंह ना छिपाया। वहां की संस्कृति में थूकना संपूर्ण तिरस्कार और घृणा का प्रतीक था। अरब वासियों में प्रायः अमेरिकी पर्यटकों के लिए ये घृणा देखी गई है। हम पर भी थूका गया, परंतु हम बच निकले। परंतु सत्य तो यह है कि वो प्रायः अमेरिकी पर्यटकों से घृणा करते हैं, और विशेष करके जब वे आपको कोई सामान बेचना चाहते हैं और आप उन्हें मना करके कहें, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अनेक ऐसी घटनाएं हुई है कि वे आप पर थूक देते हैं। ये उनका आपके प्रति तिरस्कार और घृणा का प्रदर्शन है। ये पूर्व की संस्कृति का एक भाग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहूदियों ने यीशु का इनकार ही नहीं किया, वरन उस पर थूका भी, और गाल मोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। यशाया अध्याय 50 में मसीह की नम्रता से आरंभ होता और आगे के अध्यायों में भी नम्रता का प्रदर्शन करता जाता है। अध्याय 53 में लिखा है, यशाया अध्याय 53 पद 3, और लोग उसे मुख फेर लेते थे। जब यीशु ने आपको आपके पापों से मुक्त कराया था, तब वो देखने में रूपवान नहीं दिखता था। उसका चेहरा खून से लथपथ सूजा हुआ मांस का पिंड सा था, जो सूज कर विकृत हो गया था। वो पहचानने में नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर थूक ही थूक था। उसकी पीठ कोड़ों की मार के कारण खून से लथपथ थी। उसके सिर पर कांटों का हार था। पिलातुस ने कहा, इस पुरुष को देखो, परंतु वो तो मनुष्य का सा दिखता ही नहीं था। उसके कान खुले थे। उसने स्वर्गीय पिता की इच्छा के प्रति स्वयं को समर्पित किया, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा था। और इब्रानियों 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। यद्यपि थूका जाना हमारी तरह उसे भी घृणित लगता होगा, साथ ही जैसा उसके साथ व्यवहार किया गया, उसकी निंदा की गई, परंतु उसका आपके लिए जो प्रेम है वो इन सब से अधिक था, तथा वो आनंद जो उसके मन में था कि आपको धो दे, मुक्त कर दे और आपको सब पापों से शुद्ध कर दे। यही वे विचार थे जिन्होंने उसे उस निरादर और घृणित व्यवहार को सहन करने की क्षमता दी। उसने हमसे कितना अधिक प्रेम किया। ओ परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम उस प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करें। यशाया अध्याय 50 पद 7। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। उसका भरोसा स्वर्गीय पिता पर था। उसने अपने आप को परमेश्वर और उसकी इच्छा के अधीन पूरी तरह कर दिया था। यशाया अध्याय 50 पद 8 से लेकर 11 तक। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है? वो मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम सब जो आग जलाते। पद 11 अन्य जातियों की एक प्रथा है जिसे वे किया करते थे। यशाया अध्याय 50 पद 11। और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी ये दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। तुम झूठे देवताओं के पीछे गए, तुम जो इन झूठी मूर्तियों की पूजा करते हो, तुम जो इन झूठी प्रताओं को मानते हो, तुम्हें मेरी ओर से ये प्राप्त होगा कि तुम संताप में पड़ जाओगे। ये बात मेरी समझ नहीं आता है कि एक यहूदी व्यक्ति धर्म शास्त्र के इस भाग को पढ़कर कैसे मसीह यीशु को मसीहा मानने से चूक सकता है। मैं समझ नहीं पाता वे इन पदों को पढ़कर मसीह यीशु की भविष्यवाणी या इन भविष्यवाणियों के मसीह यीशु में पूरा होने को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हे पिता, हम तेरे उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो तेरे मन में हमारे लिए है, जबकि हम जानते हैं कि हम उसके योग्य नहीं और इस योग्य भी नहीं कि उसे प्राप्त कर सके। परंतु परमेश्वर, तूने फिर भी हमसे अनंत प्रेम रखा, तूने हमें अपनी करुणा की रस्सियों से बांधकर खींचा और अपने पुत्र को भेजा। हम तेरे अत्यधिक आभारी हैं। आज प्रभु, हम तेरे प्रेम के पात्र हैं। पिता, हम तुझसे प्रेम रखते हैं और आभारी है कि तूने हमें अपना शिष्य बनने के लिए चुना है कि हम फल लाएं, कि हम तेरी सेवा करें और तेरे साथ तेरे राज्य में रहें। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बुलाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने मसीह यीशु के रक्त के द्वारा हमें मुक्ति प्रदान की और तूने हमें उसमें स्वीकार किया। अब प्रभु, हम तेरी संतान हैं। हम इस अंधकार भरे और विकृत संसार में तेरी संतानों की नाई आचरण करें, यीशु के नाम में, आमीन। अब प्रभु आपके साथ हो और प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सुरक्षा करे। प्रभु का अनुग्रह आपके लिए हर बात में प्रचुर हो कि आप उसके प्रेम के संपूर्ण धन का और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए अनुग्रह का संपूर्ण अनुभव करें, मसीह यीशु के नाम में।